परमेश्वर प्रभु, परमेश्वर प्रभु वहाँ का मालिक है। ऐसा करेगा तो मतलब नहीं रहेगा, बिना पूछ करके ऐसे चला जाता है। पूछ करके এটাকে খুলে দিয়ে এটাকে টাইট করে দে। টাইট হবে কি? হ্যাঁ ঠিক,
পতিতানন্তানেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো মহাবদন্নায় কৃষ্ণ প্রেম প্রদায়তে কৃষ্ণায় কৃষ্ণ চৈতন্য নাম্নে গুরবে গৌরচন্দ্রায় রাধিকায় তদালয়ে কৃষ্ণায় কৃষ্ণ ভক্তায় তদ্ভক্তায় ইয়ং প্রব্রজন্ তমনুপেতমপেতকৃত্যম দ্বৈপায়নো বিরহকাতরয়া জুহাব পুত্রেতি তন্ময়তয়া তর্বোভিনেদু তং সর্বভূতদ্বয়ম্। তবৈবাস্মি তবৈবাস্মি ন জীবামি তয়া বিনা ইতি বিজ্ঞায় রাধে তন্ময় মাম চরণম্। আজকে বিজয়া দশমী, কোথাও কোথাও কালকেও হয়েছে, আমরা আজকে বিজয়া দশমী মানে কালকে বিজয়া দশমী সম্বন্ধে বলেছিলাম। বিজয়াদশমী সম্বন্ধে দেবীর কোনো সম্বন্ধ নেই, বিজয়াদশমী ভগবান রামচন্দ্র হনুমানের নিকটেতে এটা খবর পেলেন, সংবাদ পেলেন যে তিনি লঙ্কাতে আছেন, ও লঙ্কা মে হ্যাঁ, इसलिए सुग्रीव से बंदरी सेना को लेकर समस्त बंदरी सेनागण के लिए सेखन के हिंदी बेसी ना बंगल हिंदी बोलने चल गए अपने हिंदी बुझते पार गए तो तिनी কৃষ্ণঘাটে বনে জঙ্গলেতে ছিলেন, একটা শ্যামল গাছের তলায় তিনি সে অবস্থাতে তার কুটি ছিল। সেইখান থেকে সমস্ত বান্দরি সেনাগণকে নিয়ে বিজয়ের জন্য, লঙ্কা বিজয়ের জন্য যাত্রা করেছিলেন, এই জন্য তার নাম হলো বিজয়া দশমী। দেবীর সম্বন্ধে কোনো কিছু নাই। আজকে তার জন্ম হয়েছিল কি কোথায় বিজয় যাত্রা করেছিলেন নাকি কোনো খাস অসুরকে এই সময় মেরেছিলেন, কিন্তু বাংলার স্মার্ট সমাজ দেবী পূজক শক্তি পূজক তারা এইরকম হয়তো একটু কল্পনা করে দিয়ে পারে। দেবী পূজা খারাপ নয়, তারা পূজা করতে পারে, দেবী পূজা করতে পারে, তারা অর্থ ধন টাকা পয়সা এইসব দেবীর নিকট চাইতে পারে, তিনি দিতে পারে। এটা কৃষ্ণ বলেছেন যে সে তুমি জগতে পূজিত হবে আর সব লোকের মনোকামনা পূর্ণ করবে, অতএব তিনি করেছেন। কিন্তু আজকের দিনেতে দেবীর সঙ্গে এই তিথির সঙ্গে কোনো সামঞ্জস্য আর মানে দেবীকে সাথ মে ইসকা কই ভি সামঞ্জস্য নেই হয় ইস পর্বকে সাথ। বিজয়া দশমী মানে রামচন্দ্র জি নে বিজয় কিয়া যাত্রা কি, ইসলিয়ে এই জন্য ক্ষত্রিয় রাজাগণ আজ থেকে 30-40 বছর পূর্বে যখন ভারতেতে ক্ষত্রিয় রাজবাড়া রাজস্থান আর চিত্তর আর কোথায় কোথায় সবগুলি ছিল, সব রাজনীতিবর্গ আজকে অত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তারা ধার দিত, ওসব ধার দিতে থে আর আজকে কহিন না কহিন যুদ্ধ কা অভ্যাস করতে থে। এসলে ইসকা নাম বিজয়া দশমী। ধীরে 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 রামায়ণ ইত্যাদি কি লীলাও মে রামলীলা মে ইয়া দিখলায় জানে লগ গিয়া যে রামচন্দ্র জি নে অন্ত মে মারা হ্যায় রাবণ কো। কিন্তু রাবণ কো কব মারা, 90 দিন তক যুদ্ধ হুয়া, 90 ডেজ যুদ্ধ হয়েছিল, 90 দিন যুদ্ধ হুয়া। 90 দিন মানে 3 মহিনা। হ্যাঁ, তো 3 মহিনা মে যদি আজই কৃষ্ণ রামচন্দ্র জি নে আজ রাবণ কো মারা আজই কে দিন মে, তো আজ সে চৈত মহিনা কিতনা দিন পড়তা হ্যায়? ইতনা দিন তক আশ্বিন কার্তিক অগ্রহায়ণ পৌষ মাঘ আর ফাল্গুন এ 6 মহিনা রামচন্দ্রজি কাহাঁ থে যুদ্ধ জয় করনে কে বাদ মে। বাল্মীকি রামায়ণ মে তো এসা পা যাতা হ্যায় এরকম দেখা যায় রাবণ কে মেরে দিয়ে দ্বিতীয় দিনে সীতা আসলেন অগ্নিতে প্রবেশ করলেন, তারপরে তিনি রাজ্যাভিষেক লক্ষণ কে দ্বারা দিলাইলেন বিভীষণ কে, আর তারপরে দিনেতে 2-3 দিনের মধ্যেই তিনি ওখান থেকে চলে আসলেন। পুষ্প বিমানেতে এমন ভাবে চললেন যে মনের গতিতে একদিনেতে চিত্রকূট চলে আসলেন, চিত্রকূট না ওই নন্দীগ্রামেতে তিনি চলে আসলেন একদিন লাগা। আরে অতদিন 4-5 মাস কোথায় ছিলেন? এই জন্য তিনি রাবণকে মারেন নাই, তথাপি লীলা দেখানো হয় এতে কোনো আপত্তি নাই। কিন্তু রাবণকে মেরেছিলেন ফাল্গুন মাসের শেষের দিকে, আর চৈত্র মাসের নবমীতে তিনি ফিরেছিলেন, নবীর কুই দিন আগেই আর ওনার রাজ্যাভিষেক হয়েছিল রামচন্দ্রের। রামনবমীতে নবমীতে তাহার জন্ম চৈত্র মাসে, নবমীতে তাহার বনবাস আর নবমীতে তাহার ফিরে এসে রাজ্যাভিষেক, এই তিনটা একই তিথিতে হয়েছে, এটা সমস্ত রামায়ণ ইত্যাদিতে দেখায়। আর আজকে একটি বিশেষ দিন আমাদের সম্প্রদায়ে, প্রাচীন কাল থেকে এটা আমাদের সম্প্রদায়ের লোক গ্রহণ করছে যে আমাদের সম্প্রদায়ের কলিযুগের প্রধান গুরু মধ্বাচার্য আজকে হচ্ছে আবির্ভাব দিবস। আমাদের সব ক্যালেন্ডারগুলিতে এইরকম দেওয়া হয়। আজকাল আরবাচীন কতগুলি লোক, আজকালকে আরবাচীন লোক মানে নয় জিনকো কোই জ্ঞান নেই হ্যায়, ক্ষুদ্র জ্ঞান বালে লোক, তারা বলছেন যে সে মধ্বাচার্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই। কিন্তু ভক্তিবর্ণ ঠাকুর স্পষ্ট সুরেতে বলছেন, যারা তারা কলির চ, যারা মধ্বাচার্যকে মানে না, যারা জীব গোস্বামীকে মানে না, যারা কবি করুণপুরকে মানে না, যারা বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরকে মানে না, যারা বলদেব বিদ্যাভূষণকে মানে না, যারা ভক্তি বিনোদ ঠাকুরকে মানে না, তারা সব কলির চরিটা ঠিক। এইসব তথ্য সবসে পহলে কবি করুণপুর স্পষ্ট ভাষা মে ইয়ে বতলা থা, গুরু পরম্পরা কা উল্লেখ কিয়া কবি করুণপুর। জীব গোস্বামী সে উমর মে বড়ে হ্যাঁ, ক্যোকি চৈতন্য মহাপ্রভু জি কে চরণো কা অঙ্গুঠা পি করকে কবি করুণপুর কো কাব্য কি স্ফূর্তি হুই। ইয়ে মৌন বালক থে, ইনি মৌন বালক ছিল, 4-5 বর্ষ কে হো গে থে। তো ইনকে পিতাজি ভবানন্দ, শিবানন্দ সেন, তাকে কোলেতে নিয়ে গিয়েছিলেন, ইনকো গোদি মে লে গে, আর মহাপ্রভু জি কে চরণো মে ইনকো ছোড় দিয়া। তো ইয়ে মহাপ্রভু জি কা অঙ্গুঠা, পায়ের কা অঙ্গুঠা লে করকে মুখ মে লাগা দিয়া, আর লগানে কে বাদ মে কাব্য কি স্ফূর্তি হুই এসি। যে উসি উমর মে বহুত হি সরস কিন্তু ক্লিষ্ট শ্লোক উনহোনে কাহা, চৈতন্য মহাপ্রভু জি কি প্রশস্তি মে উনহোনে লিখা, জো বড়ে বড়ে ধুরন্ধর কাব্য ওয়ালো কে লিয়ে ইয়ে অসম্ভব থা, অসম্ভব ছিল। তো তিনি পরবর্তীকালেতে বৃন্দাবন চম্পু, আনন্দ বৃন্দাবন চম্পু আর চৈতন্য চরিতামৃত, চরিত কাব্য এবং আরো অনেক সব গ্রন্থ, নাটক ইত্যাদি বহু সমস্ত গ্রন্থ তিনি লিখেছেন। তিনি আমাদের গুরু পরম্পরা তিনি লিখেছেন, কৃষ্ণ ব্রহ্মর্ষি দেবান দেবকান, ব্রহ্মর্ষি ব্রহ্মা সে হমলো কা সম্প্রদায়, তো ব্রহ্মাজি হমারে আদি গুরু, আর ব্রহ্মাজি কে বাদ মে নারদজি, ব্যাস, ব্যাস কে বাদ কিসকো লিয়া, সুখদেব গোস্বামী জি কো নেই লিয়া, কিসকো লিয়া, মধ্বাচার্য কো লিয়া, কেউ নেই সুখদেব গোস্বামী কো লিয়া, গোস্বামী ইয়ে সুখদেব গোস্বামী জি ইয়ে থে অবধূত, একদম অবধূত। ওয়ে সব চিজে সে বহুত উপর থে, ইয়ে অদ্ভুত সে ভি বড়ে থে ব্যাস জি নারদ জি, তবে এক ধারা কো লেকর কে, পরম্পরা কো লেকর কে চলে। ইনহোনে ভাগবত কা শ্রবণ কিয়া আর ভাগবত কা প্রকাশ কিয়া সুখদেব গোস্বামী। কিন্তু ইয়ে পরমহংস হোনে কে নাতে কিছু খাস প্রচার ধারা মে নহীঁ আয়ে, ইসলিয়ে হম লোগোকে আচার্য নে ইয়ে উনকো গুরু মানা, আচার্য মানা, মুক্ত মহাপুরুষ মানা, রসিক বৈষ্ণব মানা, ভাগবত মানা, কিন্তু গুরু পরম্পরা কি ধারা মে উনকো ন লে করকে, ক্যোঁকি উনহোনে কোই শিষ্য ভি নহীঁ কিয়া, জগৎ এসে হি উনকো আপনা শিষ্য সমঝে। সুত গোস্বামী কো উনহোনে মন্ত্র জ্যাসে আর দীক্ষা জ্যাসে হম লোগ দেতে হ্যায় এসা নেই, আর সুখদেব গোস্বামী কো ভি ব্যাস জি নে কোই মন্ত্র আর দীক্ষা দে করকে নহীঁ, শ্রীমদ ভাগবত উনকে হৃদয় মে প্রকাশ করকে সুনা করকে উনকো মহাভাগবত বনায়া থা ইস পরম্পরা মে। কিন্তু মধ্বাচার্য জি বদ্রিকাশ্রম মে গে আর আপনা বেদান্ত উস সময় তক অনুভাষ্য বনা করকে গে আর লে যা করকে আর উহাঁ পর ব্যাস জি কে চরণো মে, ব্যাস যাহাঁ পর ব্যাস গদ্দি ইয়া ক্যা কহতে হ্যায়, ব্যাস ঘেরা ইয়া ব্যাস গদ্দি,
वहां पर लेकर के और उनके चरणों में समर्पित कर दिया। व्यास जी ने प्रत्यक्ष होकर के उसको ग्रहण किया और उनको बहुत आशीर्वाद दिया। और उनको देखो कुकुर आश्चर्य कुकुर एक जन जाओ तो उन्होंने कहा इसे ये तुम्हारा भाष्य वेदांत का बहुत ही सुंदर हुआ है और हमारे मन के अनुकूल भी है। शंकराचार्य जी का भाष्य हमारे मन का अनुकूल नहीं था, वो सामयिक था, तात्कालिक था, सामयिक। उस समय में बौद्धों को भारतवर्ष से हटाना था, इसलिए एक ब्रह्म की स्वीकार की आवश्यकता थी, इसलिए एक निर्विशेष ब्रह्म की उन्होंने स्थापना जो कि उस समय के लिए उपयुक्त था, किंतु यथार्थ सर्वांग वेदांत का भाष्य वो नहीं है, किंतु तुम्हारा बहुत कुछ अच्छा हुआ है। उन्होंने गीता श्रीमद् भागवत का भी भाष्य किया है, उस भाष्य में अपना कोई भी मंतव्य नहीं दिया, बल्कि वेदों से उपनिषदों से पुराणों से लेकर केवल श्लोक दे दिए हैं जो उनके अनुकूल था। बहुत उनकी मेमोरी थी, जितने भी आचार्य हो गए हैं रामानुज मध्वर शंकर विष्णु साहब, इनमें इनकी मेमोरी सबसे अधिक थी मध्वाचार्य की। इन्होंने सब कोटेशन सब शास्त्रों के प्रमाण केवल प्रमाण दिया, अपना विचार कुछ नहीं दिया, उसी से लोग समझे, इसलिए विद्वत समाज में इसका बहुत ही आदर। इसलिए उनको फिर वहीं पर दीक्षा दी। मध्वाचार्य ने स्वीकार किया जी हमारे गुरु मध्व हैं। मध्वाचार्य की परंपरा में लक्ष्मी तीर्थ हुए आज से करीब करीब 700-800 वर्ष पहले, जिसे नित्यानंद जी प्रभु जी से भेंट हुई थी पंढरपुर में। ये रहने वाले थे दक्षिण के, किंतु इनकी एक गद्दी थी गया में और उसको उत्तराड़ी मत कहते थे। आठ मठों में से ये एक, तो उत्तराड़ी मठ में गया में वो लक्ष्मी तीर्थ जी कभी कभी आते थे। जैसे हम लोगों के गुरु जी अधिकांश नवद्वीप इत्यादि में रहते, वे भी यहाँ पर कभी कभी वर्ष में दो एक बार आते थे। माधवेंद्रपुरी पाद जी उसी संप्रदाय में दीक्षित थे और उसी के अनुसार में भजन करते थे, किंतु उनकी रुचि राधा कृष्ण के तरफ में थी, उनकी प्रेम सेवा। और सब समय हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो श्लोक और एक दीन दयाद्रनाथ हे मथुरानाथ कदावलोक से, ये श्लोक का सब समय भावना में डूबे रहते थे, सब समय राधा कृष्ण ही उनके प्राण थे। इसलिए हम लोगों के संप्रदाय में उनको भक्ति कल्पतरु की मूल उनको बतलाया गया और उनके शिष्य जो हैं ईश्वरपुरी पाद जी परमानंदपुरी और सब नौ थे, नौ को बतलाया गया जड़, जड़े होती हैं ना, जाती है इधर उधर। मूल थे ईश्वरपुरी पाद जी और जड़ थे और सर्व सन्यासी वर्ग, वे उनकी जड़ थे। इसके बाद में ईश्वरपुरी पाद, इसके बाद में चैतन्य महाप्रभु। कुछ लोग कहते हैं कि आकस्मिक रूप में ही चैतन्य महाप्रभु माधवेंद्र ईश्वरपुरी पाद के शिष्य हुए, आकस्मिक रूप में नहीं। माधवेंद्रपुरी के शिष्य अद्वैताचार्य, अद्वैत माधवेंद्रपुरी के शिष्य पुंडरीक विद्यानिधि, उनके शिष्य और जितने भी महाप्रभु के जितने गुरुजन हैं या उनके संगी वाले हैं, अधिकांश लोग माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे या ईश्वरपुरी पाद जी के, इसलिए जानबूझ करके ही सब लोगों ने उनसे मंत्र लिया। कृष्ण का गोपाल मंत्र और काम गायत्री दिया। माधवेंद्रपुरी ये उनके जो गुरु लक्ष्मीपति तीर्थ जिसे ही शिष्य थे नित्यानंद प्रभु जी, किंतु अल्प अवस्था में ही जब ये थे नित्यानंद प्रभु तो उनके गुरु का गुरु अप्रकट हो गए, इसलिए माधवेंद्रपुरी पाद जो इनसे उम्र में बड़े थे इनको ही अपना गुरु मान लिया, शिक्षा गुरु को ही अपने दीक्षा गुरु का सम्मान दिया जाता है, इसलिए उनको शिष्य ये सब दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि माधवेंद्रपुरी पाद जी से ईश्वरपुरी पाद से महाप्रभु और उनके समस्त परिकरों का संबंध था। जी गोस्वामी ने सबसे पहले इस चीज को प्रथम संदर्भ तत्व संदर्भ में उन्होंने कहा वृद्ध वैष्णव नाम दिया मध्वाचार्य, उसमें जय जय तीर्थ बहुत विद्वान आदमी थे जिन्होंने बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथ लिखा है मायावाद के खंडन करने के लिए। जय तीर्थ विजय ध्वज और सब नामी नामी उनका नाम लिख करके दिया, उनके ग्रंथों से सार लेकर के तत्व इत्यादि लेकर के मैं इस ग्रंथ का पर्यवेक्षण कर रहा हूं। इस ग्रंथ को पहले गोपाल भट्ट गोस्वामी जो बहुत विद्वान आदमी थे इसका संकलन किया, किंतु उसका विषय ठीक नहीं था, इधर का उधर था, विषय के उपक्रम से उन्होंने नहीं लिखा, इसलिए जी गोस्वामी ने उसको विषय के अनुसार में विभाग करके 6 भागों में उसका विभाग करके और एक एक विभाग को और भी पुष्पित और पल्लवित करके विस्तार करके चैतन्य महाप्रभु और रूप सनातन की सम शिक्षाओं का सार उसमें भर करके और 60 संदर्भ बनाए, उसमें इनको सबसे अधिक और किसी के संप्रदाय का किसी भी संत का नाम नहीं है, केवल मध्वाचार्य और मध्वाचार्य के ये जय तीर्थ विजय ध्वज और कौन है उनको याद नहीं अभी, तो वो सब लोगों का नाम दिया है और उनके ग्रंथों से मैंने संकलन करके ये सर्व संदर्भ कर रहा हूँ, इसलिए जी गोस्वामी ने उनको फॉलो किया ये भी दिया। कवि कर्णपुर ने एकदम वो गुरु परंपरा लेकर के उन्होंने दी अपने किसी ग्रंथ में गौरगणोदेश दीपिका में दिया, देकर के उन्होंने बतलाया कि ब्रह्मा से हुए नारद, नारद से हुए व्यास से मध्वाचार्य और मध्वाचार्य से राजेंद्र तीर्थ इत्यादि के माध्यम से लक्ष्मीपति तीर्थ और माधवेंद्रपुरी पाद, माधवेंद्र से ईश्वरपुरी पाद और उससे चैतन्य महाप्रभु का संपर्क करके बस वहां पर छोड़ दिया। पीछे से हम लोगों के प्रभुपाद जी ने उसी धारा बलदेव विद्याभूषण जी ने लिया और लेकर के गोविंद भाष्य में या और कोई ग्रंथ है सिद्धांत दर्प हाँ सिद्धांत रत्न की प्रमेय रत्नावली इत्यादि में ग्रंथों में इस परंपरा को उन्होंने स्वीकार किया, प्रमेय रत्नावली में उन्होंने इसको ग्रहण किया। ठीक वही शब्दों का थोड़ा सा अंतर है, उन्होंने अपने श्लोकबद्ध छंदों में किया इन्होंने अपने, किंतु दोनों में कोई अंतर नहीं है, सब उन्हीं का एक करके दिया। पीछे से श्रील प्रभुपाद जी ने उसमें अपने तक की परंपरा को जोड़ करके उसको पूरा कर दिया, जिसको हम लोगों के गुरु इत्यादि जी ने लिया। विशेष करके हम लोगों के जो अभी जो परंपरा जैसे भक्ति विनोद ठाकुर है, इसको हो सकता है कि कोई ना माने, किंतु जहां तक बलदेव विद्याभूषण का है उसको सब मानने के लिए बाध्य है, सब लोग बाध्य हैं, क्योंकि वहां तक अभी संपादित रूप में वो धारा चल रही है। बलदेव विद्याभूषण जी को कोई कहते हैं आज वाले अर्वाचीन वाले कि ये पहले मध्व संप्रदाय में दीक्षित थे, पीछे से गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में रसिकानंद के शिष्य थे, कोई उनका नाम नहीं दिया, उनके ये शिष्य थे,
पीछे से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी से सब अध्ययन किया। पूरी में वो मध्य संप्रदाय को छोड़ करके इसमें प्रवेश कर गए। क्या नहीं, नहीं वो पूरी में रहते थे, उनसे उन्होंने पुनः दीक्षा लेकर के ऐसा ही कुछ नाम राधा दामोदर, तो उन्होंने उनसे लिया और लेकर के गौड़ीय वैष्णव में प्रवेश किए और उपासना करने लगे। जी गोस्वामी का संदर्भ पढ़ने के लिए वो वृंदावन में आए और जी गोस्वामी उनसे विश्वनाथ चक्रवर्ती से उन्होंने पढ़ा और पढ़ने के बाद में उनका नाम भी उनको बाबा जी वेश दे करके उनका क्या नाम रखा था ये याद नहीं, नहीं। तो उनको विश्वनाथ नहीं और इनका भी नाम कुछ था, तो इन्होंने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के आदेश से जयपुर में जाकर के उन लोगों को विरोधियों को परास्त किया और वहीं पर गोविंद भाष्य की रचना की। यदि बलदेव विद्याभूषण अपने मन से किया या विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के इच्छा से वो जयपुर में गए, इस पर विचार करने की जरूरत है। यह सभी लोग कहते हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने इनको कहा जिसे तुम जाओ, मैं अभी वृद्धावस्था में हूँ, मैं भजन छोड़कर के अब वहाँ पर नहीं जा सकता, मेरे लिए जाना संभव नहीं, तुम विद्वान आदमी है, तुमको मैं आशीर्वाद करता हूँ, तुम जाओ वहाँ पर। वो गए। अच्छा, जाने के समय में कुछ बतलाया होगा कि ऐसे ही भेज दिया, जब इतनी देर तक शिक्षा उनको दी, इतने वर्षों तक भागवत पढ़ाया, हमारे गोसाइयों ग्रंथों को सबको उनको पढ़ाया, और जब किसी विशेष काम के लिए कहीं पर भेज रहे हैं तो कोई निर्देश देंगे कि नहीं?
विशेष निर्देश देंगे, तो
कोई विशेष निर्देश देंगे। यदि ये निर्देश के उल्टा काम करते हैं, निर्देश से उल्टा काम करते हैं, तो आने के समय उनको शासन करेंगे, डांटेंगे, ऐसा तुमने क्यों किया। तो ये वहां जाकर के गोविंद भाष्य उन्होंने लिखा और उन्होंने कहा कि मध्व संप्रदाय से हमारा हम उनकी उपशाखा है, मध्वाचार्य के हम संप्रदाय में हैं, ब्रह्म माध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में, और वही परंपरा हमारी गुरु की परंपरा है। तो ये प्रश्न एक हो सकता है, तब फिर उन्होंने ये अनुभाष्य ये गोविंद भाष्य क्यों लिखा? ये इसलिए कि मध्वाचार्य में राधा कृष्ण की उपासना नहीं है, केवल कृष्ण की उपासना है, और हम लोगों में राधा कृष्ण की स्वार्थ की उपासना है जो उन लोगों में नहीं है। है भी तो वो गुप्त रीति से है, केवल सन्यासी जो रहते हैं वहाँ के, 8 सन्यासी होते हैं, केवल वही ग्रहण करते हैं गोपी भाव, और दूसरे नहीं। इसलिए बलदेव विद्याभूषण जी उस उपासना को ठीक से प्रमाणित करने के लिए, और ये वेद सम्मत है, वेदांत सम्मत है उपासना, राधा कृष्ण की उपासना, और हमारे संप्रदाय में प्राचीन काल से ही व्यास इत्यादि नारद इत्यादि से चलती आ रही है, इस चीज को प्रमाणित करने के लिए। और उन्होंने कहा जिसे तुम्हारे विचारों का प्रतिपादन करने वाला कोई भाष्य है? तो यहाँ भाष्य तो है, तो कौन सा? श्रीमद् भागवत है। कैसे भागवत है? तो उन्होंने वो दिया, अर्थोऽयं ब्रह्म सूत्राणां भारतार्थ प्रणय गायत्री भाष्य रूपौषो वेदार्थ, ये बतलाए। और सब जगह श्रीमद् भागवत में भी ऐसा उल्लेख है, सब वेदांत सारं ही श्रीमद् भागवत मिश्यते तद्दृशामृतृप्तस्य, कहीं दूसरी जगह उसका नहीं हो सकता है। और गायत्री का भाष्य सभी मानेंगे, क्योंकि पहले सप्तम परम धीमहि उसमें भी है, इसमें भी है, उसी की व्याख्या उन्होंने की है। गोविंद भाष्य नाम क्यों दिया? देने की क्या जरूरत थी? लोग स्पष्ट रूप से समझें, जो वेदांत जो है निर्विशेष भाव उसमें नहीं है, ज्ञान परक नहीं है, मुक्ति परक नहीं है, क्योंकि उसमें एक शब्द है অপিসনরাধনে প্রত্যক্ষ অনুমান আভ্যাম। অপিসনরাধনে মানে কে? গীতা মে কী ভি উসমে বেদান্ত মে কী ভি জ্ঞান কা উল্লেখ নেই শব্দ কা, কাজে ভক্তি কা ভি উল্লেখ নেই। ভক্তি কা উল্লেখ হ্যাঁ কেসে? ভক্তি কি চরম যো অন্তিম স্থিতি হুসো কহতে হ্যাঁ প্রেম, ও প্রেম কা দূসরা নাম হরাধনা। আর আরাধনা বৈসা শব্দ হিসো শ্রীমদ্ ভাগবত মে সুখদেব গোস্বামী জি নে আরাধনা শব্দ সে হি রাধিকা কা উসমে ইঙ্গিত কিয়া। ও সেবা ও প্রেম যো রাধিকা মে কৃষ্ণ কে প্রতি হ্যাঁ, প্রেম কি সেবা সে কৃষ্ণ কো ভি জানা যা সকতা হ্যাঁ, পায়া যা সকতা। অপি সম রাধনে, রাধাজি জিস ভাব কো গ্রহণ করকে, রাধনে মানে সন রাধনে, সং রাধনে সম্যক রূপেণ রাধার সহ, রাধাজি কে সহিত, রাধা কে সহিত মে কৌন হ্যাঁ? গোবিন্দ দেব পৃষ্ঠালি ভি সব্যমান স্মরামি, রাধিকা জি কে সাথ মে হি কৃষ্ণ হ্যাঁ, নয় তো ইয়ে সম্ভব পর নহীঁ হো সকতা, ইয়ে গোবিন্দ জি হ্যাঁ। ইসলিয়ে যা রাধিকা জি রহেঙ্গে ওহা পর গোবিন্দ জি জরুর রহেঙ্গে, ইসলিয়ে উনহোনে অপি সন রাধনে, রাধাজি কি আরাধনা কিসকে লিয়ে হতি হ্যাঁ, অথবা রাধাজি কি আরাধনা কৌন করতা হ্যাঁ, ইয়ে গোবিন্দ জি করতে হ্যাঁ, ইসলিয়ে উনহোনে গোবিন্দ ভাষ্য ইসকা নাম রক্ষা। ইসলিয়ে বলদেব বিদ্যাভূষণ কো হামারে সম্প্রদায় সে নিকাল দিয়া যায় তো হামারা সম্প্রদায় হি নহীঁ রহেগা, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর জি কে বাদ মে লুপ্ত হো যায়েগা। যদি ইয়া ব্যাখ্যা আর ইয়া সম্প্রদায় আর উনকা গুরু পরম্পরা যদি বিশ্বনাথ ঠাকুর জি কো নহীঁ মান্য থা তো জব লৌট করকে আতে তো ও প্রতিবাদ করতে, যদি জীব গোস্বামী কো উনহোনে নহীঁ ছোড়া স্বকীয় ভাব কা উনহোনে উপর সে প্রতিপাদন কিয়া থা জীব গোস্বামী নে, যে রাধাজি গোপীয় কা কৃষ্ণ কে প্রতি পারকীয় ভাব ঠিক নেই হ্যাঁ, যদ্যপি ইয়ে দূসরো কে লিয়ে কিয়া থা অযোগ্য লোগো কে লিয়ে হ্যাঁ, কিন্তু জীব গোস্বামী বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর জি ভি কাজে নহীঁ একদম প্রত্যক্ষ রূপ মে উজ্জ্বল নীলমণি কী টিকা মে শ্রীমদ ভাগবত কী টিকাও মে একদম স্পষ্ট করকে লিখা, জীব গোস্বামী কা ইয়ে বিচার নহীঁ থা সন্দর্ভ মে উনহোনে ইস বিচার কো নহীঁ কিয়া হ্যায়, ও পরীক্ষা কে লিয়ে মানে দূসরে লোগো কে নিয়ে আনকোয়ালিফাইড যো লোক হ্যাঁ উনকো প্রক্রিয়া ভাব কো ও বিগাড় না দেয় ইসলিয়ে উনহোনে এসা কিয়া, যথার্থ মে উনকা ইয়ে এসা বিচার নহীঁ থা, উনহোনে প্রমাণিত কিয়া হ্যায়। যা যা পর জীব গোস্বামী নে সব কি বাত লায়া হ্যায় ও সবকো উনহোনে খণ্ডন কিয়া আর ইয়ে দিখলায়া, যদি বৈসা স্বকীয় ভাব হোগা তো শ্রীমদ ভাগবত কা বিপরীত অর্থ হো যায়, ভাগবত কে অনুকূল নহীঁ হোগা। পতি সুতান্বয় ভ্রাতৃবন্ধমান অতি বিলঙ্ঘতে অন্ত অচ্যুতাগতা, আপনি পতিও কো ছোড় করকে কৃষ্ণ কে পাশ মে গই, তো তিয়া পর অর্থ কে লিয়া যায়, কহীঁ গোপ বধুয়া লেখা হ্যায় আর কহীঁ লিখা হ্যায় কৃষ্ণ বধু গোপীয় কো, তো উনহোনে কাহা জি গোপ বধু যদি কৃষ্ণ কি বধু হ্যাঁ ইসকো মান লো, উহাঁ পর প্রেমিকা সে তাৎপর্য হ্যায় প্রিয়া সে তাৎপর্য হ্যায়। কবি কবি পুত্র কি স্ত্রী কে লিয়ে ভি বধু শব্দ কা প্রয়োগ হ্যায়, কবি কবি ভার্যা সে হ্যায় জায়া সে, ইসলিয়ে ইহাঁ পর সাধারণ রূপ মে হ্যায় জো অত্যন্ত প্রিয় হ্যায় কৃষ্ণ কো ও কৌন হ্যায় গোপ বধ, গোপো কি বধু মে, ইয়ে কেবল মায়া কে দ্বারা ইয়ে এসা কাহা হুয়া মায়া প্রত্যায়িত ভাব নেই হ্যায় গোপীয় মে পার কী ভাব, ইহাঁ পর ভী গোলোক মে ভি এসা ভাব হ্যায়, ইসলিয়ে অনিত্য ভাব ইয়ে সব নেই হ্যায়। ইয়ে সব কো বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর কে বিচার কো ভি কম সে কম তো 30-35 উদাহরণ কে দ্বারা প্রমাণ কে দ্বারা উস বিচার কো হটা, তব সে গৌড়ীয় বৈষ্ণব মে ফির সে ইয়ে পুনর্জীবিত ইয়ে বিচার হুয়া পার্থিব ভাব কা, নহীঁ তো সব এক তরহ সে লুপ্ত হতা চলা যা রহা থা। অভি ভি ওয়েসি স্থিতি হ্যায়, যদি কোই কৃষ্ণ কা রাধা জি কা ভজন করতা হ্যায়
और कृष्ण प्रेम गोपी प्रेम कहता तो उसको सभी लोग सहजिया कहने लगते हैं, क्योंकि वो लोग सब जानते नहीं। हम लोगों के जितने भी ग्रंथ हैं, हम लोगों का प्रयोजन क्या है?
प्रेम प्रयोजन, कृष्ण प्रेम प्रयोजन।
गोपीनाथ जी प्रयोजन नहीं है, वो प्रयोजन के तत्व हैं। गोपीनाथ के प्रति जो प्रेम है ये प्रयोजन है, गोपीनाथ जी प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन के वो अधिष्ठात्री देवता है, इसलिए प्रयोजन हमारा क्या है? कृष्ण प्रेम हमारा प्रयोजन है। अभिधेय क्या है? गोविंद जी की सेवा अभिधेय है, गोविंद जी नहीं अभिधेय। ये क्या है? अधिष्ठात्री देवता है, किंतु उनकी जो सेवा है ये सेवा ही प्रणाली ही अभिधेय। मुक्त अवस्था में और बद्ध अवस्था में उसी का रागानुगा कुछ भाव हो सकता है। इसी तरह से हमारे संबंध कृष्ण नहीं है, कृष्ण के साथ में मदन मोहन के साथ में हमारा जो रिलेशन है वो हमारा संबंध ज्ञान है। कृष्ण रहने से कंस का क्यों नहीं हो गया संबंध? इसलिए ऐसा नहीं। तो जी हम ये कह रहे हैं कि यदि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी को यदि यह मत पसंद नहीं था, ये गुरु परंपरा पसंद ठीक पसंद नहीं थी, तो जब जीव गोस्वामी के विचारों का वो कह रहे हैं, स्पष्टीकरण दे रहे हैं, तो इसका क्यों नहीं करते अपने ग्रंथों में? जरूर जरूर न कहीं प्रतिवाद करते, यह हमारा यह अभिप्रिय नहीं है, मैं इसको नहीं मानता हूँ, या किसी से अपने शिष्यों से भी कहते, किंतु नहीं। आने के बाद में खूब आशीर्वाद दिया, जैसे बालीघाई की सभा में प्रभुपाद जी जब वहाँ से आए भक्ति विनोद ठाकुर के यहाँ, तो प्रभुपाद जी को उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया। ऐसे ही अभी गुरु महाराज जी हमारे एक प्रबंध लिखा अचिंत भेदाभेद, जिसमें इन विचारों का खंडन किया और उसमें बहुत से प्रमाण दिए हैं, एक दो नहीं, इन सब प्रमाणों के लिए उसको देखना चाहिए। मेरी इच्छा है उसको कुछ उसको पूरा करके और उसको अचिंत भेदाभेद सचमुच में ऐसा कर करके और उसको हिंदी में प्रकाशित करें। तो उसमें उन्होंने दिया है एक, आज से कम तो 250 वर्ष पहले की बात, ये विवाद उठा था, आज ही का विवाद नहीं, बीच बीच में लोग कहते हैं चैतन्य महाप्रभु जी दूसरों का संप्रदाय क्यों स्वीकार करेंगे? तो कृष्ण ने क्यों दूसरे को गुरु बनाया? राम ने क्यों दूसरों को गुरु बनाया? क्यों बनाया? वो तो स्वयं भगवान है, यदि वो गुरु ग्रहण करते हैं तो महाप्रभु जी नरलीला कर रहे हैं, भगवान की लीला नहीं प्रकाश कर सकते, इसलिए नरलीला में गुरु होना भी और धार्मिक परंपरा होना आवश्यक है। महाप्रभु जी ने कोई नई चीज नहीं दी जगत को, कोई नई चीज नहीं ले आए, उसके पहले ही उन्होंने जब महाप्रभु जब थे तब उन्होंने नहीं दिया था, एक कल्प पहले तो आता आते 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 धारा थोड़ी सी छिप जाती है, ढक जाती है, ले महाप्रभु ने तो दिया था। उसी के कंटिन्यूएशन में हमारे आचार्य लोग सब आए, महाप्रभु जी किसी को मानते नहीं है कोई भी आचार्य को, और स्वयं आचार्य होंगे एक तुच्छ चीज, आचार्य होना क्या है? मध्यम अधिकारी का कार्य है, तो महाप्रभु मध्यम अधिकार को ग्रहण करके आचार्य बनना पसंद करेंगे ना स्वयं आराध्य वस्तु होना पसंद करेंगे, इसलिए यह बात ठीक नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ये संप्रदाय के प्रवर्तक नहीं है, इनके शिष्य प्रशिष्य इनके भक्त लोग ही आचार्य और संप्रदाय के प्रवर्तक हो सकते हैं। कृष्ण राम नारायण ये संप्रदाय प्रवर्तक नहीं, उनके जो सेवक लोग हैं, जैसे नारायण का संप्रदाय का प्रवर्तक लक्ष्मी जी, हम लोग संप्रदाय जो कृष्ण आराध्य हैं इसके प्रवर्तक कौन हैं? ब्रह्मा जी। सनक सनंदन सनातन अपने आराध्य के अपनी उपासना के क्षेत्र में प्रवर्तक हैं, उनके आराध्य थे उसके प्रवर्तक नहीं है। ये रुद्र स्वामी संप्रदाय में रुद्रदेव जी अपने आराध्य का की सेवा को प्रचलन करने के लिए वहाँ से संप्रदाय खड़ा किया, उनके उपास्य जो भगवान हैं वो नहीं, तो ये बहुत छोटी चीज हो जाएगी, तो वो उपास्य न रह करके उपासक बन जाएंगे, वो तो बहुत नीचे श्रेणी में चले जाएंगे। इन सब चीजों का जिनको कांडक ज्ञान नहीं है वो लोग सब ऐसी ऐसी बातें करते हैं, उन लोग को समझना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर मुक्त पुरुष थे, हमारे बलदेव विद्याभूषण भी साधारण नहीं है, विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर जी और उनके पहले जिनका नाम बतलाया कवि कर्णपुर जी, जीव गोस्वामी, ये बद्ध जीव नहीं थे, इसलिए इनके विचारों को मान करके हमको चलना चाहिए, सम्मान दे करके चलना चाहिए, भोईफोड़ नहीं होना चाहिए। ये सब भोईफोड़ ये विचार वाले हैं, इनके विचारों की कोई भी स्थिति नहीं है। हमारे गुरु जी ने कहा आज से 250 वर्ष पहले नवद्वीप में ये बात उठी, और उठी कहाँ से उठी, सत्यानंद जी थे, सत्यानंद ब्रह्मचारी, जिन्होंने ये जी गोस्वामी का पहला संदर्भ तत्व संदर्भ पर उन्होंने टीका लिखी है, बहुत विद्वान आदमी है वो, श्रृंगार भट्ट के आदि हैं, अपने को नित्यानंद वंश का कहते हैं। उन्होंने सबसे पहले ये आरंभ किया हुई फोड़ विचार, और उसमें दिया है अपनी टीका में, तत्व संदर्भ की टीका में। तो उसी के समय में जब विवाद आरंभ हुआ इनके विचारों को, कुछ लोगों ने अर्वाचीन लोगों ने ग्रहण किया है, तो उस समय में जब विचार सभा हुई तो उसी समय में एक सहजिया कोई थे, उनके लिखे हुए दो चार श्लोक प्रमाणित उन लोगों ने मान करके उनको जाकर के बतलाया, जैसे हम लोग गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय महाप्रभु जी के संप्रदाय में हैं, हम लोग मध्वाचार्य संप्रदाय में नहीं। तो ये एक विद्वान थे नवद्वीप में, उनका नाम मुझे नहीं आ रहा, बड़े भारी दिग्गज विद्वान थे, और आशु
कवि
ये सब लिख सकते थे श्लोक, मुझे नाम याद नहीं, उसमें होगा वो अचिंत भेदाभेद में गुरु जी ने दिया है। हाँ, तो उनके पास में सब लोग गए, गौड़ीय वैष्णव यहाँ के मथुरा वृंदावन के गौरमंडल के ब्रजमंडल के और क्षेत्रमंडल के सभी विद्वान लोग वहाँ पर गए, और उनसे कहा जैसे आप निर्णय एक दीजिए, आप बड़े विद्वान हैं, आपकी बात हम लोग मान लेंगे, आप एक निर्णय दीजिए गौड़ीय वैष्णव का संप्रदाय से मध्व संप्रदाय का कोई संबंध है या नहीं। तो साथ ही साथ उन्होंने 30-40 श्लोक बनाकर और एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके और उसमें दिया, उसमें जो बातें मैं कह रहा हूँ वो सभी बातें उन्होंने दे करके उन्होंने कहा जो संप्रदाय भेद का मूल कारण केवल थोड़े से विचारों का नहीं है। पहला विचार तो ये, लोग कहते हैं कि मध्वाचार्य के विचार से हम लोगों का विचार मेल नहीं खाता, किस लिए, हमारे उपास्य हैं राधा कृष्ण, और उनके उपास्य कौन हैं, बाल गोपाल, किंतु हैं नारायण तत्व वासुदेव कृष्ण, वो लोग कहते हैं। इस विचार में उन्होंने बतलाया यह मतभेद थोड़ा सा रह सकता है, गुरु शिष्य में भी मतभेद और वैशिष्ट होता है, ये मतभेद नहीं है वैशिष्ट है। श्रीवास पंडित जी और हनुमान के अवतार मुरारी गुप्त और रूप गोस्वामी के छोटे भैया अनुपम जी, ये सब राम के उपासक थे, किंतु गौड़ीय वैष्णव में इनका क्यों आया, केवल गौड़ीय वैष्णव में ही नाम नहीं, पंचतत्व में श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास को क्यों लिया, इनको तो जाना चाहिए थे रामानु श्री संप्रदाय में जाना चाहिए था, मुरारी गुप्त को वहाँ पर हनुमान का अवतार, उनको उस संप्रदाय में जाना चाहिए था, विचारों का मिल तो खाता नहीं है, वो तो इनके उपास्य तो राम है, तो क्यों नहीं उनको अपने संप्रदाय से निकाल दो, शिवास को निकाल दो, तो फिर रहेगा क्या, महाप्रभु की लीला ही सबको रह जाएगी। इसलिए थोड़े से मतभेद संप्रदाय का भेद का कोई कारण नहीं होता है, नहीं तो ये सब होता है। हमारे संप्रदाय में बहुत से इसमें विचार है, कोई वात्सल्य रस से भगवान का भजन कर सकता है, कोई सख्य से कर सकता है, कोई मधुर से कर सकता है, तो इसलिए संप्रदाय भी अलग हो जाना चाहिए, किंतु संप्रदाय तो अलग हुआ नहीं, স্বর্গ দামোদর জি সে ওর শিবাস জি সে মতভেদ রা তো সম্প্রদায় অলগ অলগ হো গিয়া। অদ্বৈতাচার্য ওর নিত্যানন্দ প্রভু মে বিচারো কি খটপটি হতি থি, তো ইসলিয়ে উনকা ভি সম্প্রদায় অলগ কর দিয়া যায়। নিত্যানন্দ প্রভু মে বলদেব জি কা আবশ হ্যায় আর মহাপ্রভু জি মে রাধা জি কা আবেশ হ্যায়, ইসলিয়ে উনকা অঙ্গ কো ছু নাই সকতে, ইসলিয়ে বিচারো কো নাই ছুয়েঙ্গে, ইসলিয়ে সম্প্রদায় অলগ অলগ হো জানা চাহিয়ে। তো ইয়ে হুয়া তো নাই, ইসলিয়ে থোড়ে সে মতভেদ কে লিয়ে এসা নাই হোতা হ্যায়, সম্প্রদায় এসা নাই হোতা হ্যায়। জেসে জি গোস্বামী জি ওর আমারে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর জি বিচার মে ভেদ নাই হ্যায়, বৈশিষ্ট্য নাই হ্যায়, কিতনা ভেদ হ্যায়, সব জগত পারখিয়ে ভাব খোঁজা আর উনোনে লিয়া হ্যায় স্বকীয় কো, তো ইসলিয়ে ইনকা ভি সম্প্রদায় অলগ অলগ কর দো, এক বিচার কে নাই হ্যায়, इसलिए थोड़ा सा मतभेद ही संप्रदाय के भेद का कारण नहीं होता है, इसलिए इस विचार को ये विचार ठीक नहीं है। वो लोग कहते हैं कि उन्होंने गोपियों को तामसिक बतलाया और देवताओं से भी हीन बतलाया, ये लिखा है। कहते हैं किसी कारण से परिस्थिति बस कोई काय बात निकल जाती है तो वही वो मूल बात नहीं होती, उसका अंतर हृदय देखना चाहिए, इसका विचार क्या है। हमने कहा दिया जी कृष्ण बड़ा लंपट, चोर, जार, शिखार शिरोमणि, शॉर्ट, तो कृष्ण की निंदा हो गई। किस विचार से मतलब इन्होंने भी वल्लभाचार्य ने भी गोपियों की तीन श्रेणी भागा में बांटा, तामसिक राशिक सात्विक, तो इसलिए वो भी अच्युत हो गए, उनको भी नहीं छुएंगे, इनको भी नहीं छुएंगे, ये सब विचार नहीं।